ओम शांति।
तो हम तो अपना अध्यात्म का जब हमारा दृष्टिकोण बदल गया तो लेकर हमारा मन शिव बाबा में उसके प्यार में गौर हो जाता। तो ये बहुत बड़ी मदद मिलती है हमें गीतों से। लेकिन एक खास बात जो मेरे विचार में आ रही थी वो ये कि बाबा ने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हमें बताए हैं, जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन और हमारे योग का अभ्यास जुटा हुआ है। एक बहुत ही रिमार्केबल बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने हमें कही है वो है कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसा चित्र वैसा चरित्र। देखने से हमारी, जैसे दृष्टि से हमारी वृत्ति और हमारी स्मृति का बहुत गहरा संबंध है। और अगर हम अपना मनोपरिवर्तन चाहते हैं, लाइफ में चेंज चाहते हैं, तो चित्र का बहुत महत्व है। न केवल प्रदर्शनियों का, लोग ऑडियो विजुअल की आजकल बात करते हैं, न केवल प्रदर्शनी का हम प्रयोग करते हैं लोगों को चित्रों के माध्यम से समझाने के लिए, बल्कि हमारा जो मनोपरिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी है, वो चित्र से बहुत कनेक्टेड है। आप देखेंगे जब मनुष्य क्रोध करता है, जब वासना में होता है, जब लोभ आता है, जब मोह आता है, तब भी उसके सामने चित्र आता है, और जब वो इनसे उपराम होकर छूटा हुआ होता है तब भी उसके सामने चित्र आता है। दरअसल किसी ने कहा है कि मनुष्य के जो विचार हैं वो चित्रमय भाषा में हुआ करते हैं। शब्द की उत्पत्ति बाद में होती है, लेकिन पहले पहले मनुष्य के सामने चित्र आता है। फिर निजार के तौर पर एक व्यक्ति कोई जब खाना खाता है कुर्सी पर बैठकर, तो उसको जरूरत महसूस होती है कि उसके सामने कोई ऊंची जगह हो जहां पर वो भोजन की थाली रखकर खा सके। तो अपने मन में उसके एक चित्र आता है कि ऐसा एक तख्ता सा हो, उसकी चार टांगे सी हो और उसको एक बढ़ई से बनवा लिया जाए तो कैसा रहेगा, उसकी इतनी हाइट हो ताकि उसको रखने में आसानी हो। टेबल नाम उसका बाद में पड़ता है, मेज नाम उसका बाद में पड़ता है। जैसे कहा गया है कि आविष्कार जो है वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले आवश्यकता महसूस हुई, फिर वो आविष्कार किया गया, फिर जब वो चीज बन गई तो जरूरी है कि उसको कोई नाम दिया जाए, क्योंकि अब वो आ गई है प्रयोग में तो उसको कोई किसी नाम से बुलाना पड़ेगा, तब उसके बाद होता है। तो ये मैं कह रहा था कि कहा गया है कि चित्र सबसे पहले मनुष्य के मन में आते हैं। बच्चा भी भाषा बाद में सीखता है, बोलना या लैंग्वेज उसको बाद में सिखाई जाती है, लेकिन व्यक्तियों के वस्तुओं के चित्र देखना पहले से शुरू कर देता है। तो चित्र जो है वो हमारे माइंड पर अंकित हो जाते हैं, एक इम्प्रेशन डाल के जाते हैं। क्या हम इस जो सिद्धांत है इसका पूरा प्रयोग अपने जीवन के मनोपरिवर्तन में कर रहे हैं या इसकी कोई और आवश्यकता है? मैं ये समझता हूं कि इसको और ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लोगों को जैसे मैंने पहले बताया, अब हम वीडियोस यूज करते हैं, जो अगर हम किसी को जबानी बैठ के समाचार सुनाएं कि हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसकी बजाय मुंह बोलती तस्वीर जिसको कहा जाता है वो अगर सामने आ जाती है तो उसका इम्प्रेशन और होता है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आज आप देखते हैं लोग ज्यादातर वीडियो टीवी बैठ के देखते रहते हैं, उनको आप कोई प्रोग्राम में बुलाएं तो भी नहीं आते, वो वहां से छोड़ के उठना ही नहीं चाहते। बल्कि जैसे और एडिक्शन हैं, टीवी की एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। हमारे डॉक्टर भाई बहने ड्रग एडिक्शन की बात किया करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़े समय में आप अखबारों में पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा खतरनाक एडिक्शन जो है वो टीवी की एडिक्शन है, वहां से लोग जाने नहीं चाहते। ओबेसिटी की बात हम करते हैं कि मोटापा बढ़ता जा रहा है इत्यादि इत्यादि, ये भी टीवी भी उसमें एक सहायक है। बहुत सारे जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स अभी भी डॉक्टर चर्चा कर रहे थे, उसकी बुनियाद टीवी है, जिसको बाबा ने टीबी कहा है अपनी भाषा में। तो वो चित्र है, वो चित्र ही पतन का कारण बन रहे हैं और चित्र ही उत्थान का कारण बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक बात है जो किसी ने इसकी तरफ उतना ध्यान दिया नहीं जितना बाबा ने हमारा खिंचवाया है। और उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, दो चार मेरे सजेशंस हैं बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि बच्चे जैसे सूर्य है। अब जैसे मैंने सूर्य शब्द लिया, आपके मस्तिष्क में सूर्य का एक चित्र आ गया। अब वो सूर्य है या चंद्रमा है, उसके आसपास लाइट है, खास करके आप देखते हैं जब बारिश होकर रुकती है तो उसके बाद आकाश में आप चंद्रमा को देखें तो उसके आसपास बहुत क्लियर आसमान जब क्लियर होता है, खास करके वर्षा के बाद जब गैसेस भी डिजॉल्व हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक हैलो ऑफ लाइट, ऑर्ब ऑफ लाइट, वो एक लाइट का प्रभा मंडल जिसको हम कहते हैं प्रकाश का, वो बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा लगता है, सिल्वरी सिल्वरी जैसा उसके आसपास लगता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आप ऐसे समझो कि जैसे वो चंद्रमा और सूर्य, बाबा ने उसको कार्ब या ऑर्ब, ऑर्ब शब्द है, कार्ब भी कई दफा हमारी सिंधी बहने भी कहती हैं, बाबा भी कई दफा कहते हैं कि जैसे वो लाइट के कार्ब में है, आप कह दीजिए कि लाइट के ऑर्ब में है। ऑर्ब भी इंग्लिश का एक शब्द है जिसको प्रभा मंडल हम हेलो ऑफ लाइट भी उसको कहते हैं। तो वो आप अपने आप को हमेशा ये समझो, ये चित्र अपने मन में लाओ अभ्यास के लिए, पुरुषार्थ के लिए, कि मैं एक ज्योति बिंदु हूं, जैसे वो चंद्रमा या सूर्य के आसपास एक ऑर्ब ऑफ लाइट होता है, ऐसे मेरे आसपास भी एक आर ऑफ लाइट या ऑर्ब ऑफ लाइट है। तो योग अभ्यास में इसकी बहुत बड़ी मदद मिल सकती, मैं ये समझता हूं। चित्र का चरित्र पर जैसे प्रभाव पड़ता है, थिंकिंग जैसे कहते हैं, यू थिंक सो शैल यू बी, वैसे आप बन जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसे ही अगर हम ये चलते फिरते उठते बैठते ये याद रखें, जो अभी तक हमें ये याद रहता है कि मेरा ऐसा आंख कान नाक वगैरह है, मैं शरीर हूं, जन्म-जन्म मंत्र से हमें ये इमेज अपना पड़ा हुआ है, और भगवान को भी हम इस तरह से ही सोचते और समझते अभ्यास करते रहे। जैसे ने किसी ने कहा है कि मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, मनुष्य शरीरधारी है तो उसने भगवान भी शरीरधारी बनाए। जितने भी लोगों ने पूजा करनी शुरू की, जो भी उनके मन के भावना के अनुसार उनका भगवान या इष्ट देव या पूज रहा, वो भी सब उन्होंने शरीर रूप ही दिया। अब जब हमें मालूम पड़ा है परमात्मा का कि वो परम आत्मा है, शरीर की बात उसमें नहीं है, और अपना भी परिचय हमें मिला कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, तो वो जो ज्योति स्वरूप के आसपास लाइट है, लाइट का जो ऑर्ब है या कार्ब है, जो भी आप कह दीजिए, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि उसको आप याद रखें। दूसरा बाबा ने कहा है कि आप ये सोचें, चलते फिरते उठते बैठते इसी स्मृति में रहें, क्योंकि स्मृति का स्थिति से विशेष संबंध है। ये भी एक दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि हमारे आध्यात्म के लिए, हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें बताया है, बहुत रिमार्केबल है कि स्मृति का स्थिति से संबंध है। तो चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है, इन दोनों नियमों को अगर आप एक साथ जोड़कर अभ्यास में प्रयोग करें उसका, जिसको बाबा कहते हैं योग के प्रयोग, एक तो योग का प्रयोग और तरह भी होता है और एक इनका प्रयोग योग में जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करें कि मैं एक फरिश्ता हूं, मैं तो लाइट स्वरूप हूं और हड्डी मांस का नहीं हूं, मैं तो प्रकाश का बना हुआ हूं, तो लाइट और माइट हूं, ये अगर हमारा अभ्यास जितना हम करें, जो हम कहते हैं कि सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं रहती, तो कभी वो कभी वो, ये चित्र अगर अपने सामने लाएं, ऐसे अपने बहुत से चित्र हैं, आप देखते हैं एक चित्र हमारे बुक्स के टाइटल्स पर, मैगजीन्स पर बना रहता है, जिसमें एक योगी बहन या भाई बैठा है, लाइट से सराउंडेड है, चारों तरफ लाइट से घिरा हुआ है, सी ऑफ लाइट में है, और उस पर लाइट उतर रही है और उतरकर चारों तरफ से निकल रही है, रेडिएट हो रही है, बड़ी पावरफुल लाइट की टॉरेंट्स, जैसे टॉरेंशियल रेन्स होती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, ऐसे ही वो जो लाइट है वो बहुत बड़ी करेंट्स में रेडिएट हो रही है, उससे निकल निकल कर सारे विश्व पर जा रही है। और बहुत लोग इसका अनुभव करते हैं, आपको भी सबको अनुभव होगा कि जब हम योग में बैठते हैं, जब अपना इस तरह का चिंतन करते हैं कि मैं वो लाइट और माइट हूं और मुझ पर लाइट आकर और विश्व में मैं ये लाइट और माइट रेडिएट कर रहा हूं, तो वो चित्र उस टाइप का हमारा अपना अपने जीवन का आता है, तो उसी स्थिति में हमें जाने में बड़ा सहज हो जाता है। तो ये चित्र हमें बहुत सहयोग देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा एक चित्र और है जिसमें एक बहन, विदेश वाले भाई बहनों ने छापा हुआ है, एक बहन बैठी है योग में और शिव बाबा से लाइट आ रही है, बस आकाश तो दिखाई नहीं देता, आकाश तत्व तो कोई ब्लूइश कलर या दूसरा तो कुछ है नहीं, वो जो ब्रह्म तत्व का प्रकाश का रंग है डिवाइन लाइट का, और जो स्पिरिचुअल लाइट है वो लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट दिखाई गई है। तो वो भी जब चित्र हम देखते हैं, कोई भी देखता है, आप कभी एक्सपेरिमेंट्स करें, किसी नास्तिक के हाथ में भी दे दें, कोई थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड हो उसके हाथ में भी दे देंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम जरूर देखता है उसको, जल्दी से छोड़ता नहीं है, उसका ध्यान जाता है। और अगर आप किसी से पूछें कि जब आप इसको देख रहे थे तो कैसा आप सोच रहे थे, क्या स्थिति थी, मैं समझता हूँ कि उसको पहले से निस्बत हल्कापन या विथड्रॉल फ्रॉम द बॉडी या थोड़ा सा पीस आंशिक रूप से, और चाहे क्षणिक रूप से ही क्यों ना हो, हमारे बिना कुछ बताए हुए मिला हुआ। तो ये जो चीज है जो मैं कह रहा था कि इसका प्रयोग हमारे अगर जीवन में हो, जो ये थोड़े से चित्र गीत की जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे ही जो चित्र हैं, ये अगर इस तरह से हमारे पुरुषार्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, जैसे कि बाबा ने बताया कि तारे हैं, वो पहला साक्षात्कार जो बाबा ने किया था उसमें ये देखा था कि तारे तारे से हैं और वो आकाश से आते हैं, कोई देवी बन जाती है, कोई देवता बन जाता है, और वो एक बगीचा सा है, सोने के महल जैसे हैं, दूध और घी की नदियां बह रही हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है, लेकिन साथ में बाबा ने ये कह दिया कि कैसे बनानी है वो नहीं बाबा ने बताया, वो बाद में धीरे धीरे बताया बाबा ने, अगर उसी टाइम सब बता देते तो फिर शायद पूरा ही हो जाता कोर्स, वो बाबा ने धीरे धीरे बताया। एजुकेशन होता भी ऐसा है, जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हमारा ग्रोथ होता है वैसे वैसे बात बताई जाती है, ये कोई एक ढंग से हाथ में देने की चीज तो है नहीं, तो ब्रेन ने ग्रास्प करनी होती है जैसे जैसे हम कर पाते। तो उस विधि से जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रयोग से बाबा ने धीरे धीरे हमको जागृत किया, हमें ये बताया। लेकिन वो भी जैसे एक देखा गया दृश्य, विनाश का भी दृश्य बाबा ने जब देखा, साक्षात्कार हुआ, तो कैसा बाबा का प्रभाव पड़ा। अब जब कोई संदेश पुत्री बाबा के पास जाती हैं भोग लेकर, फिर संदेश लेकर आती हैं, तो क्या कहती हैं, आज जब मैं बाबा से मिली, बाबा ने कहा आओ बच्ची, बाबा ने बड़े प्यार से देखा। जब इस किस्म की बात वो कह रही होती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि जैसे आप यहाँ ओम शांति भवन के हाल में नहीं है, आप भी वही हैं, बाबा सामने कह रहे हैं संदेश पुत्री को कि आओ बच्ची, आपके सामने बाबा और वो होते हैं और लाइट के उसमें आप देखते हैं सब चीज। और फिर आगे आगे जैसे वो कहती है, फिर एक फूल प्रकट हुआ, फिर उस पर ये प्रकट हुआ, तो उस समय फिर वैसी स्थिति हमारी सुनते सुनते होती जाती है। सडनली जब वो कहती है कि बाबा ने कहा अच्छा मेरी याद देना, फिर हम वापस लौटा थे लेकिन उससे पहले उसी बीच में जो सारा वर्णन हो रहा होता है, उस बीच के वक्फे में तो हम सब वहां ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं बिना ट्रांसपोर्ट के। तो वो जो स्थिति होती है वो किस पर आधारित है, जो जो बाबा भी जो साक्षात्कार कराते हैं वो वैसे ही बाबा बता सकते हैं किसी संदेश पुत्री को, बच्चे बाबा बच्चों को जाके ये संदेश देना, दैट्स ऑल। लेकिन पहले कमल प्रकट हुआ, फिर सूरज प्रकट हुआ, फिर माला प्रकट हुई, फिर सब भाई बहन प्रकट हुए, तो ये सब प्रकट हुए तो धीरे धीरे वो हम भी प्रकट होते जाते हैं वहां पर। तो वो सारा जो चित्रमय प्रोसेस है आप देखेंगे कि उसका बहुत बड़ा प्रयोग है। हमें जो मन करता है कि अच्छा आज हम सुने, आज क्या संदेश मिला, जो लोग डट कर बैठे रहते हैं, जो वैसे भी हाथ जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं, वो दिन वो भी बैठे होते हैं, वहां ना बैठे हों तो इधर उधर जहां जहां वो स्पीकर लगा होता है वहां सुनते हैं भाई क्या बाबा ने कहा। तो क्या वजह है कि उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट जाता है और हमें बड़ा एक सूदिंग एक्सपीरियंस, बड़ा एक अच्छा लगता है, न केवल वो स्टोरी लाइक होता है बल्कि न केवल उसका अपना एक स्पेशल म्यूजिक होता है हमारे माइंड के लिए, बल्कि उसका जो चित्रमय भाषा है, जो कहने का तरीका है, उसको नाम ही कहते हैं हम साक्षात्कार। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपको मालूम है कि इंग्लिश में जब किसी को कहते हैं ना कि आप मेरी बात समझे, तो उसको लोग क्या कहते हैं, नाउ यू सी इट। और जब कोई समझाता है कहते आई सी, मैं तो बात समझा रहा हूं, दिखा तो कुछ भी नहीं रहा, फिर भी कहता है आई सी, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीइंग, देखने की तो कोई इसमें बात ही नहीं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, कहते मैं उसको बात करता हूं, हर दो मिनट के बाद कहते आई सी आई सी आई सी। तो जब तक वो देखता नहीं है मन के आंख से किसी बात को, तो वास्तव में समझता नहीं। समझना और देखना, किसी ने कहा है सीइंग इज बिलीविंग, देखने से ही लोग विश्वास करते हैं। सीइंग का आई का इतना महत्व है, जिसको बाबा कहते हैं हमारी आईज क्रिमिनल हो चुकी, आंखें धोखा देती हैं, और ये आंखें ही जो है अब हमारी पवित्र हो जाए, दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाए, तो फिर सृष्टि भी पवित्र हो जाएगी। नई सृष्टि का जो निर्माण है वो हमारे दृष्टि के परिवर्तन में है, एटीट्यूड्स जिसको हम कहते हैं। हमारे माइंड के जो एक देखने का तरीका है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बदलेंगे तभी दृष्टि बदलेगी, दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तो दृष्टि भी नहीं बदलेगी। तो वो जिसको इनसाइट कहते हैं, हम अपने ज्ञान में भी कई दफा बाबा कहते हैं इनसाइट, अंदर में हम क्या देखते हैं, हमारा अंतर मन क्या देखता है। अब हम शिव बाबा की याद में बैठते हैं तो जब हम परम धाम को देखते हैं, ब्रह्म तत्व देखते हैं, वहां शिव बाबा को देखते हैं इत्यादि इत्यादि, तो हमारी स्थिति तभी तो वैसी होती है। कुछ नहीं देखता हो कोई व्यक्ति बैठे हुए, ऐसा तो होता नहीं। अनुभव में भी कुछ ना कुछ तो वो सूक्ष्म रूप से देखता ही है। तो देखना हमें क्या चाहिए, देखने का प्रभाव है जैसे मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग इज सीइंग, सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। ये देखना और अंडरस्टैंड करना वास्तव में ये एक प्रकार से सिनोनिमस, ये एक प्रकार से एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। तो जब ऐसी बात है तो अपने अभ्यास में ऐसे चित्रों को भी अगर हम प्रयोग करें तो हम बहुत वो सहज रूप से उस अनुभव में स्थित हो सकते। तो और जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि आज तो मैं टसल में ही रह गया, मेरा मन कुछ लगा नहीं, योग में मेरी स्थिति हुई नहीं, तो आप देखेंगे कि वो कुछ और देख रहा था, चित्र वो भी देख रहा था। वो शिव बाबा का, परम धाम का, अपने स्वरूप का चित्र न देखकर वो कोई दूसरे चित्र देख रहा था। तो भटकना भी जो है वो चित्र से कनेक्टेड है और स्थित होना भी जो है वो चित्र से कनेक्टेड है। अगर इस सिद्धांत को हम ठीक तरह से समझ लें और उसका प्रयोग करने लगे तो मैं समझता हूं कि हमारे योग में बहुत सहायक हो सकता है। लेकिन ये सब बातें हमें मालूम होने के बावजूद भी बाबा जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बाबा की अव्यक्त वाणियां पिछली भी हम उठाकर अगर देखें तो मैं समझता हूं कि अपने रूप से कोई कमी उनमें नहीं है। जो हमें मार्ग प्रदर्शन प्रदर्शना मिलनी चाहिए, गाइडलाइंस डायरेक्शंस मिलनी चाहिए, पुरुषार्थ के लिए जो उपाय साधन बताने चाहिए वो इतने सूक्ष्म है। क्या हमारी स्थिति हो, जो हमारा लक्ष्य हो वो क्या हो, कहाँ हमें पहुंचना है वो भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। बच्चे मनसा सेवा करो, फरिश्ता रूप बनो, लाइट और माइक बनो, मूर्ति कला को प्राप्त करो, और ये समय कितना कम है, आपका मुख भी सेवा करने वाला हो, आपकी दृष्टि भी सेवा करने वाली हो, ऐसा समय आएगा जबकि लोगों को ज्ञान देने का टाइम भी नहीं होगा, इतनी भीड़ आकर होगी, और उस टाइम फिर आपकी दृष्टि से ही जो आपका मैसेज मिल जाए, आंखों आंखों के इशारे से कोई बात हमारी समझ जाए। तो ये कैसे हमारी स्थिति का बाबा ने चित्रण किया है कि कैसी स्थिति होनी चाहिए, और कोई एक आध दफा नहीं बल्कि बहुत इस चीज के लिए बाबा ने काफी टाइम से हमें इस बात के लिए कहना शुरू कर दिया कि टाइम कितना कम है, और इसके लिए काफी देर से हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई होनी चाहिए। बाद में जाके ऐसे हालात आएंगे कि फिर वो जो सामने सरकमस्टांसेस हो रहे होंगे, मन उधर बिखर जाएगा, वो सरकमस्टांसेस अपनी तरफ खींचेंगे और फिर स्थिति ऐसी प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। पहले से अगर बनी हुई नहीं होगी तो फिर ये हालत होगी, ये भी सब बाबा ने बताया हुआ है। लेकिन हम ऐसे फैक्टर्स को सोचना चाहते हैं कि क्या कारण है कि बाबा ने तो इतनी ऊंची स्थिति बताई हुई है और हमारी उतनी ऊंची स्थिति योग की वैसी हमारी स्टेज जो बाबा ने बताई है वो क्यों नहीं हो पाती, उसका कारण क्या है। जैसे कहते हैं कि कारण को जाने बिना निवारण नहीं होता, या किसी का काज ना मालूम हो तो उसको रूट आउट नहीं किया जा सकता, तो क्या कारण है। जबकि समझ इस बात की है, हमें बात क्लियर हमें बताई गई है, ऐसा नहीं कि उससे अनभिज्ञ हम, कभी कोई ऐसा समय था कि हमें मालूम नहीं था कि हमें क्या स्टेज प्राप्त करनी है, योगी की स्टेज अंतिम क्या होगी। तो लेकिन अभी तो बाबा ने कई तरह से हमें बताया है। अब जब हम मान लो शरीर छोड़ के जब संसार में विनाश होगा, और उससे पहले या जिस समय भी बाबा का इशारा है कि जब अंतिम समय आएगा और सब आप में वो परम धाम को अपने घर को वापस लौटेंगी, वहां पर तो हमारी अवस्था कर्मातीत होगी। लेकिन उस कर्मातीत अवस्था का इस योगी जीवन में अनुभव करना, इस शरीर के होते हुए उसको इलिमिनेट करके उसकी कॉन्शियसनेस को उससे विड्रॉ करके न्यारे होकर उससे उस स्थिति का यहां अनुभव करना, जो एक बहुत बड़ा उच्च किस प्रकार का एक अनुभव है, उसके लिए तो बाबा ने बताया हुआ है कि यही समय अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं। इसलिए बाबा ने ये हमें स्लोगन दे दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा ने ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए
हमें बहुत ही क्लियर वस्ता बताया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने से हम वंचित रह जाते हैं या हमारी गति तीव्र नहीं होती, हम कहीं न कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो उसको अगर हम ध्यान देकर सोचें तो उसके कई कारण हैं। एक तो मैं ये समझता हूं कि जाने अनजाने, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हम स्वयं को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि सी फादर या सी योर गोल। अपना लक्ष्य हम सामने रखें, जो स्थिति बाबा ने बताई है, हम सदा वो स्थिति आपने सामने रखें या बाबा में जो संपूर्णता है उसको हम सामने रखें। उसकी बजाय जो हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो वरिष्ठ भाई बहन हैं, सीनियर हैं, चाहे हम शरीक हैं, चाहे आज आए हुए नए हैं, चाहे पुराने हैं, उनकी स्थिति को जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे जीवन में हल्कापन आ जाता, पुरुषार्थ हमारा कम हो जाता। एक व्यक्ति कोई 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन किसी ने हमें उसके विषय में बताया कि उस व्यक्ति में अभी तक भी क्रोध है, या किसी ने किसी और प्रकार से देह अभिमान है, उसके जीवन का कोई ऐसा इवेंट हमने खुद देख लिया जिससे हमने महसूस किया कि इतना समय पुरुषार्थ करने के बाद भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं, तो उसको देखकर अलबेलापन, आलस्य या जो स्पीड में कमी है कि जैसे और चल रहे हैं, हम भी कोई किसी से पीछे तो है नहीं, आखिर बाबा ने सबको ही ले चलना है, कोई सिर्फ अकेले मुझे ही तो नहीं जाना परमधाम में या वैकुंठ में, जाना तो सारे परिवार को है, जब तक सब तैयार नहीं होंगे मैं अकेला जाना भी क्या करूंगा वहां जाके कोई वहां मैं अकेला तो बाहर फोड़ूंगा नहीं जैसे कहा जाता है। तो वो जो सबके साथ सो मेरे साथ, उस बात को सोच करके वो कहते ना, हमा यारा दोजख, हमा यारा बहिश्त। एक फारसी की कहावत है कि जाएंगे अगर दोजख में तो भी दोस्तों के साथ जाएंगे, बहिश्त में जाएंगे तो भी दोस्तों के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाने का कायदा रहता, नरक में भी जाएंगे तो दोस्तों के साथ जाएंगे, कोई तो साथी चाहिए ना वहां। तो वो जो एक दूसरों को देखते हैं हम पुरुषार्थ की कमी, चाहे हमको एक हमारा कॉन्शियस प्रोसेस वर्क न करता हो, जानबूझ के हम ऐसा न सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमारे जीवन में अलबेलापन, आलस्य या पुरुषार्थ की कमी का कम रफ्तारी आ जाती, जिसको बाबा कहते हैं हियर नो इविल, इन फालतू बातों को मत सुनो। हम जो बैठ के इन किस्म की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, डिटेल में जाते हैं, नोट करते हैं और रुचि लेते हैं कई दफा, तो वो बड़ी घातक हैं, बहुत हार्मफुल हैं, वो हमारे लिए विष का काम करते, घातक है। तो ये जो एक बात है कि हम दूसरों को कंपेयर करते हैं, बाबा ने कहा है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर अपना अपना अलग स्थान रखता है, उसका पार्ट भी अलग है, एक नहीं मिलता दूसरे से, इतनी वैरायटी है इस संसार में, चाहे वो जिसको लोग आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं तो भी वो आइडेंटिकल नहीं होते, सही मायने में कहने मात्र आइडेंटिकल होते हैं। तो एक जब दूसरे से नहीं मिलता, हाउ कैन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स। वो अपना पार्ट कर रहा है, उसकी अपनी स्थिति है, मैं उसको उसी तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करूं, मैं तो उसका फॉलोअर थोड़ी हूं, मुझे तो फॉलो करना है शिव बाबा को या किसी एबीसी को। तो ये तो बात हम भूल जाते हैं, मुझे लगता है बाबा की जो बहुत सारी मुरलियां हैं कि बच्चे अलबेलापन या आलस्य, इस पर कई बाबा की वाणियां चली हुई हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन उसमें से एक ये जो बात है खास मैंने देखा है कि जब हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि और भी अभी कौन से पूर्ण हुआ है, किससे पूर्ण नहीं होती, बल्कि अगर हमें कोई कह भी देता है, वार्न भी करता है कि आपकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं भला किसकी ठीक है वो बताओ। जब सभी थोड़ा बहुत घन चक्कर में पड़े हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं भी हुआ तो मुझे क्यों एक्सेप्शन टू द रूल आप समझते हैं? सभी दाल भात में सब गले हुए दाने हैं, मुझे आप अलग करने की कोशिश क्यों करते हैं? तो उसका हम बल्कि बड़ा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक ऐसा विचार है कि ये जो बात हम अपने दूसरों के साथ कंपेयर करके और उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें ये महसूस नहीं होता कि इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, ये हमारे स्पीड को, हमारी प्रगति को कम करता है, हमें उस स्पीड में जाने नहीं देता। अगर हम ये समझें कि हम करके दिखाएंगे, हम बाबा के नंबर वन बच्चे बनेंगे, जिसको बाबा कहते हैं जो उठे सो अर्जुन, ऐसा पुरुषार्थ मैं करूंगा, एग्जाम्पल बनूंगा। बाबा ने जैसे कहा है कि एग्जाम्पल बनो और सैंपल बनो, तो ये तो बाबा ने नहीं कहा कि ए या बी या सी को आप फॉलो करो, आप उसके फॉलोअर बन जाओ। तो ये एक कमी हमारे जीवन में आ जाती है। दूसरा मैं ये देखता हूं कि हमको जो कहा जाता है दिव्य गुण धारण करो, लाइफ में वैल्यूज को अडॉप्ट करो, मानवीय मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, डिवाइन वैल्यूज हैं, ये जो गुण हैं दैविक गुण, इनको अपने जीवन में लाओ। तो कई दफा हम दिव्य गुणों के प्रयोग में एक दिव्य गुण को दूसरे दिव्य गुण से लड़ा देते और उसमें धोखा खा जाते। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपको ये मालूम है कि महात्मा गांधी को मर्डर किया गया था, किसी ने पिस्तौल से मारा था उसको। महात्मा गांधी प्रेयर सभा में गए थे लोगों को एड्रेस करने के लिए और नाथूराम गोडसे ने उसको पिस्तौल से मार दिया। नाथूराम गीता पढ़ता था, महात्मा गांधी भी गीता पढ़ते थे, दोनों की गीता में बड़ी अटूट श्रद्धा थी। और आपको मालूम है गीता के जो दिव्य गुणों की वर्णन है, एक अध्याय उसमें आसवी लक्षणों का और दैवी लक्षणों का है, उसमें अहिंसा का बहुत वर्णन है। क्षमा करनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया भावना होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि गुण बताए हुए हैं। तो गीता पाठी होने के बावजूद भी उसने हिंसा की, जबकि महात्मा गांधी इस बात को कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। वो तो उससे अहिंसा की बात उठा रहे थे, और नाथूराम गोडसे उससे लोगों ने बाद में प्रेस वालों ने पूछा कि आप भी गीता पाठी हो, गीता को बहुत मानते हो। उसने कहा कि जब उसको सजा मिली फांसी की, तो उसने कहा कि मुझे डर नहीं है। लोगों ने पूछा कि क्यों, डर तो हर एक को होता है जब ये शरीर उसे छीना जा रहा है। तो वो बोला कि मैं गीता का पाठ करता हूँ, आत्मा शाश्वत है, ये शरीर चोले के समान है और ये मुझे फांसी का डर नहीं है। तो लोगों ने कहा कि अगर तुम इतना गीता में विश्वास करते हो तो तुमने उसको मारा क्यों पिस्तौल से? कहता है कि मारना ही गीता में लिखा हुआ है। उसने कहा वो कैसे लिखा हुआ है? कहता है कि उन्होंने कहा कि गीता में तो अहिंसा लिखी हुई है, तो दैवी गुण धारण करने चाहिए। कहता है मैंने भी अहिंसा का पालन किया है। उसने कहा कैसे? तो आपको शायद मालूम हो कि उसने मारा क्यों था, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कुछ रकम कुछ पैसे देने थे और उन दिनों पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया था, और उस परिस्थिति में उसको पैसे लोग समझते थे कि इस समय नहीं देने चाहिए, अभी अगर हम देंगे तो वो उससे गोला बारूद खरीद के हमारे ही लोगों को मारेंगे, हमारे से पैसे से गोलियां खरीद के हमारे ही लोगों को मारेंगे। और महात्मा गांधी ने उन दिनों में एक स्टेटमेंट दी थी कि नहीं, जो किसी का वाजिब है वो हमें दे देने चाहिए, हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, दूसरा कुछ भी करता है वो उसका काम है। तो उसको जो गुस्सा आया उसने मार डाला उसको। तो अब वो जो जवाब दिया ना उसने कि मैंने अहिंसा का पालन किया है, उसने कहा क्या? कहता है कि वो कईयों की हिंसा करा रहा था, अगर किसी एक आदमी को मारने से एक दस बच जाते हैं तो उसको अहिंसा ही समझना चाहिए, मैं भी अहिंसा का ही पालन करने वाला हूं। देखिए अब उसकी अहिंसा की व्याख्या क्या है, वो भी दिव्य गुण का पालन करना चाहता है, अहिंसक वो भी बनना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 आदमी को मारने जा रहा है, उसको अगर मैंने मार के 9 आदमी बचा लिए तो मुझे आप हिंसक क्यों कहते हो, मैं तो अहिंसक, ये वो एक्सप्लेनेशन देता था। तो कई दफा क्या होता है कि हम कोई जस्टिफाई करते हैं किसी बात को, और आप अगर ध्यान देंगे, अगर इस बात को ऑब्जर्व करेंगे महीनता से, तो जो लोग कोर्ट में दो प्रकार के वकील जाते हैं, दोनों अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि जो विरोधी पक्ष का व्यक्ति है वो भी जस्टिफिकेशन किसी गुण के कारण से देता है, वो अवगुण को भी गुण बनाकर बताता है कि ये जो मैंने किया ये गुण है, अवगुण नहीं है। मान लो कोई क्रोध करता है तो क्रोध के लिए वो बताएगा कि इस समय क्रोध करना जरूरी क्यों था। और अभी कुछ समय पहले यहाँ आए थे मुरारजी देसाई, तो वो ठहरे हुए थे यहाँ पर अपने ज्ञान विज्ञान भवन में, तो मुझे कहा गया कि आप गीता के बारे में थोड़ा टाइम इनसे बातचीत करना, 10 मिनट का टाइम था। अब 10 मिनट में इतनी सारी गीता की बात और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे की जाए, थोड़ा सा समय मुझे मिला, उससे बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि गीता तो अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, तो आप सोचिए कि भगवान ने अर्जुन को कैसे कहा होगा तीर कमान उठाओ और मारना शुरू कर दो, तो उसने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया होगा,
तो ये तीर कमान या लड़ाई जो है ये विकारों के विरुद्ध थी, शत्रु वो थे, ये मैंने बताने की उसको कोशिश की कि अगर ये बात मान जाता है तो फिर उससे और आगे बढ़ेंगे। तो वो मुझे कहता है मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कहा आप तो महात्मा गांधी को मानते हैं और आप तो अहिंसा को भी मानते हैं, गीता को भी मानते हैं। कहता मानता जरूर हूं, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था बॉम्बे में, गुजरात और गुजरातियों और मराठों के झगड़े हुए थे और उस टाइम रायट्स हो रही थी, एक दूसरे को मार रहे थे, तो मैं चीफ मिनिस्टर था उस टाइम। मैंने कहा मारो गोली, जो झगड़ा करते हैं, रायट्स करते हैं और लोगों को रास्ते जाने वालों को मर्डर करते हैं, शूट एट साइट, इनको गोली मार दो। तो कहता है उस समय मैंने गीता को हाथ में उठा के अहिंसा का पालन थोड़ी करना था, उस समय यही अहिंसा थी कि जो अहिंसा करने वाले थे उनको मैं मरवा डाली, क्योंकि वो जो अहिंसक लोग थे उनको भी मार रहे थे। अहिंसक को ही हिंसक लोग मार डालेंगे सारी दुनिया में अगर मैं हिंसकों को ना मरवाता था, ये जस्टिफाई वो करने लगा। कितने लोगों की मैं आपको मिसाल दूं, आप आज के बाद अगर इस बात पर ध्यान दें तो आप ये महसूस करेंगे कि जो लोग दिव्य गुणों को भी मानना चाहते हैं और करते आसुरी गुणों का पालन है, बात दिव्य गुणों की करते हैं, तो कारण क्या है? अगर हम उनको ये समझा दें कि वास्तव में जो आसुरी गुण वो दिव्य गुण समझे बैठे हैं वो दिव्य गुण नहीं है, तो उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और हमारे भाई बहनों में भी कि जो लोग दिव्य गुणों को भी मानना चाहते हैं और करते आसुरी गुणों का पालन है, बात दिव्य गुणों की करते हैं, तो कारण क्या है? अगर हम उनको ये समझा दें कि वास्तव में जो आसुरी गुण वो दिव्य गुण समझे बैठे हैं वो दिव्य गुण नहीं है, तो उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और हमारे भाई बहनों में भी मैंने ऐसा देखा है कि कई दफा वो दिव्य गुण का जो प्रयोग है वो एक दिव्य गुण का दूसरे दिव्य गुण से विरुद्ध कर रहे होते हैं और वहां पर संघर्ष पैदा होता है, वो समझ में नहीं आता। आपको कई मिसालें इस विषय में दी जा सकती हैं। आमतौर से लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, भाई सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद, लोग कहते हैं सत्य बोलो, हर एक ने ये उपदेश दिया है, लेकिन साथ साथ कह देते हैं कि अगर कोई गाय जा रही हो उसके पीछे कसाई जा रहा हो और वो कसाई पूछे जी इधर से कोई गाय जाती तो आपने नहीं देखी, तो हमें कहना चाहिए नहीं जी इधर से तो गई नहीं गाय, क्योंकि हम उसको बचाना चाहते हैं गाय को। तो कहते हैं वैसे तो सच बोलना ठीक है, लेकिन ऐसे मौके पर झूठ बोल देना चाहिए, झूठ उस समय सत्य से भी श्रेष्ठ है। तो देखिए कि वो झूठ को अच्छा समझ रहे हैं तभी तो उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो क्या चाहते हैं कि कसाई उसकी हिंसा कर देगा, उस हिंसा से बचाने के लिए झूठ भी बोल देना ठीक है। तो सत्य भी एक दिव्य गुण है, अहिंसा भी एक दिव्य गुण है, लेकिन वो अहिंसा बनी रहे उसके लिए झूठ बेशक बोल दिया जाए, उसका मतलब यह है कि एक दिव्य गुण का घात कर रहे हैं दूसरे दिव्य गुण के लिए है, तो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि दिव्य गुण का पालन किया जाए, लेकिन वो सत्य को समझ नहीं रहे। कई बाबा क्या हुआ कि बाबा दिल्ली में आए हुए थे, साकार बाबा, और दिल्ली में राजौरी गार्डन सेंटर पर रहे हुए थे, तो उन्होंने करोल बाग का जो सेंटर है, छोटा सा एक सेंटर था, ये अभी का जो सेंटर है वो तो बहुत बाद में हुआ, तो एक छोटा सा सेंटर था और वहां पर एक व्यक्ति जो है वो सीआईडी में काम करता था, कोई सब इंस्पेक्टर के रैंक का था वो, उसकी धर्मपत्नी जो है वो अपने सेंटर पर आती थी, उसको अच्छा लगता था, वो नियमों में चलने लगी, पवित्रता का व्रत उसने लिया, और उसका जो पति था वो बिल्कुल और माहौल का और विचारों का था, उनसे संघर्ष चलता था दोनों का, तो वो उसको जाने नहीं देना चाहता था। उसको जब मालूम पड़ा कि बाबा आए हुए हैं, उसने क्या किया, जैसे उसका मन काम करता था उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी कि दादा लेखराज जो हैं वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि पति पत्नी का संबंध विच्छेद करते हैं और मेरी पत्नी भी वहां उनके पीछे लगी हुई है और वो अबडक्ट करने का मेरे को डर है, इत्यादि इत्यादि जो कई दफा होते हैं एक्स क्लासेस होती हैं, कुछ इल्जाम उन्होंने लगा दिए। अपने पुलिस का आदमी था, पुलिस वाले उसके परिचित थे और उसको रिपोर्ट कर ताकि एक दफा मैं इनको अरेस्ट करूंगा तो कम से कम कहेंगे भाई इसकी पत्नी को तो जो जायज हो करने दो, हमारा झंझट पड़ता है, इसको छोड़ो। तो ये उसका टैक्टिक था कि इनको अरेस्ट करो तो ये छोड़ देंगे मेरा पीछा। उसने वो पुलिस वाले को भेज दिया सब इंस्पेक्टर ने, इंस्पेक्टर ने राजौरी गार्डन में, और इंसल्ट करने के लिए और तंग करने के लिए वो व्यक्ति आया कि दादा लेखराज कहाँ है। तो बहनों ने कहा बोलो क्या बात है, तो ब्रिजमोहन भाई जो है उनके लौकिक पिता आनंद जी उन दोनों जीवित थे, भाई चांस उस दिन वो ऑफिस से जल्दी आए थे, वो भी वही थे, तो वो उन्होंने बात की भाई क्या बात है, तो कहता है कि उनको पुलिस स्टेशन पर इंस्पेक्टर ने बुलाया। आदमी और उनको पता तो है नहीं, कोई परिचय तो था नहीं, इंस्टीट्यूशन की अभी इतनी प्रतिष्ठा भी नहीं थी, नए नए सेंटर खुले थे, और उसने रिपोर्ट कर दी, उसने भी उस पर एक्शन ले लिया। तो कहते हैं दादा लेखराज को पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन पर बुलाया, उन्होंने कहा साथ में लेके आना, तो मैं साइकिल ले आया हूँ, मेरे पीछे बैठ गए। तो ऐसा उसने कहा। अब आनंद जी जो थे उसने कहा भाई ये तो बड़ा एक मुसीबत आ गई, अब क्या इसको किया जाए। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं गया हुआ था ओल्ड दिल्ली में कुछ प्रिंटिंग के वर्क के कनेक्शन में, तो लौट कर सेंटर पर आया हुआ था, तो मुझे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कोई ऐसी बात होगी। तो उन्होंने फोन किया कि आप जल्दी जल्दी आओ, ऐसा पुलिस वाला आया हुआ है। मैं उसको परसुएट तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं वो क्या एक्शन लेता है, मैं अकेला हूँ, आप ही जल्दी से आ जाओ। तो मैं तो वहां गया, लेकिन मेरे जाने से पहले उन्होंने उसको क्या दिया कि भाई वो तो काफी बुजुर्ग हैं, 80 साल के करीब हैं, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, बीमार हैं वो, और वो तो नहीं जा सकते, इंस्पेक्टर को जाके कहो, उसको टोने की लाई, पानी पिलाया, चाय लिटरेचर दिया, प्यार किया उसको, और उसको अखीर में ये कन्विंस करके भेजा। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा था साथ में साइकिल पर बिठा कर ही ले। तो उसने उनको कम से कम इस बात के लिए एग्री किया कि भाई उनको जाकर कहो कि उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते, इतना कह दो, अगर फिर वो कहेंगे तो फिर देखेंगे। इसी बीच में उन्होंने मुझे बुलाया, दो चार और को बुलाया कि अभी हम अपना प्लान कर रहे हैं, कल को फिर ये अरेस्ट करे या वो खुद ही आ जाए तो उसका कोई उपाय किया जाए। तो खैर वो लौट गया, तो फिर जाके उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे पहले भी बताया था कि वो आया हुआ है, तो बाबा ने उनको कहा था बात करो उससे। तो फिर उन्होंने बाद में जाके कहा बाबा वो छुट्टी हो गई चला गया। तो बाबा ने कहा बच्चे कैसे गया, क्या बात हुई, क्या कहता था, क्या बात थी। तो उन्होंने कहा मैंने उनको कह दिया कि बाबा मैंने कहा तो ठीक नहीं लेकिन क्या मैंने यही दिया, बाबा बीमार है। बाबा हंसे भी सही और बाबा को बड़ा अजीब सा लगा। बाबा ने कहा बच्चे छोटी सी बात के लिए झूठ क्यों बोला, ये कहने की क्या जरूरत थी, हमें इतना आत्मिक बल होना चाहिए, उसको ठीक तरह से समझा नहीं सकते, ज्ञान से नहीं उसको समझा सकते, परिचय नहीं दे सकते, और उसको कहते हो बीमार है, वो उठ नहीं सकते, समझा, साइकिल पर चढ़ने की बात तो और रही, वो तो उठ भी नहीं सकते, और अगर वो मेरे कमरे में आ जाता मैं उठ के बैठा तो बाबा ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा उसको, ये तो ठीक नहीं कहा। अब आप देखिए कि सच बोलना चाहिए ये तो ठीक बात है, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े आदरणीय जिनके प्रति हमारा जीवन भी कुर्बान है, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं उनको आंच ना लगे, कोई उनको अंगुली भी ना लगाए, उन पर कोई बात ना आए, और हम उसके लिए ये समझते हैं कि चलो जहाँ इतने किए हैं एक भी कर्म और सही, मिसाल के तौर पर इसको भी योग से समाप्त कर देंगे जहाँ और करेंगे या तो बाबा बख्शन आ रहे हैं अपने आप बख्शेंगे क्योंकि उनके लिए कर रहे हैं, वट एवर इट मे बी, कोई जस्टिफिकेशन तो मनुष्य के मन में आती है। तो एक बोल डाला चलो एक छोटा छोटा सा है, कोई हार्मलेस है, कोई किसी को हम नुकसान धोखा तो दे नहीं रहे, एक अच्छे काज के लिए, एक नोबल पर्पज के लिए, ये गलत आदमी जिसकी खोपड़ी उल्टी है उसको कोई ठीक बात समझाने के लिए हमने कह दिया मिसाल के तौर पर, लेकिन कहा। और बाबा ने क्या कहा कि बच्चा ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बोलने की क्या जरूरत थी, हमें आत्मिक बल होना चाहिए। तो लेकिन ये दोनों जो मूल्यों का संघर्ष है दिव्य गुणों का, किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मान लो न्याय, न्याय नहीं हुआ, और न्याय एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है, एक ईश्वरी गुण है, दैवी गुण है, लेकिन कई लोग जब देखते हैं न्याय नहीं हुआ जोश में आ जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि अन्याय तो खराब है लेकिन अत्याचार और क्रोध ये भी खराब है। अगर हम न्याय प्राप्त करने के लिए क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो एक अच्छे बात के लिए फिर हम खराब बात करना चाहते हैं। हमारे सिर्फ एंड्स ही अच्छे नहीं होने चाहिए, मीन्स भी अच्छे होने चाहिए, लक्ष्य अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी दिव्य होना चाहिए। तो ये हमने देखा है कि हम इसमें भी धोखा खा जाते हैं। हमारे कोई एक भाई बहन है हमसे व्यवहार ठीक नहीं करते, हमारे पीछे ही पड़ गए, हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या मान लो किसी वजह से कुछ हमारा उनके साथ स्वभाव या संस्कार नहीं मिलता, तो हम अपना जो बाबा ने दैवी गुण बताए हुए हैं कि मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, संतोष, मिलनसार इत्यादि इत्यादि जो देव गुण है, उनमें से किसी न किसी देव गुण को हम उत्तेजित होकर उसको सीधा करने के लिए, मदद चकाने के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, या उसको रोकने के लिए, वट एवर मे बी दी वर्ड्स वी यूज, तो हमारे स्थिति जो होनी चाहिए अव्यक्त फरिश्ता रूप, या वो जो आर्ब वाली मैंने बताई थी, उससे हम नीचे अपने शरीर में आ जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि ये जो मूल्य है, एक मूल्य हमारे सामने जरूर होता है, होता दैविक गुण है सामने कि भाई हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, ये इतनी मुद्दत से ज्ञान में है, इतनी मुद्दत से ज्ञान में होने के बाद भी कईयों को परेशान कर रहा है, ठीक नहीं चलता है, तुम लोग नहीं बोलते तो मैं बोलूंगा, इसको ठीक करूंगा, तो ये मुझे जिम्मेवारी किसने दी है? बाबा ने कहा है डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स, अपने हाथ में लॉ आप मत लो। आप लोगों के सामने बाबा कहता है मैं न्यायकारी हूं, वो मैं बैठा हूं, उसको देखूंगा, आप अपना फर्ज पूरा करो, जो धारणा आपके लिए बताई है उसको करो, वो नहीं कर। तो वो जो हमारी स्थिति जो बाबा कहते हैं बननी चाहिए, उस न बनने का जो एक कारण कई दफा महसूस होता है वो ये है कि उसमें भी देखते हैं हम दूसरों को हैं, लेकिन उनके किसी अवगुण को, आसुरी लक्षण को मिटाने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो तरीका अपना लेते हैं, उस तरीके में अपने किसी देव गुण का घात कर बैठते, उसको छोड़ बैठते, उससे हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाते। और फिर वो जो मैंने बताया उसमें भी होता क्या है, जो पहली बात मैंने चित्र की कही थी, उस व्यक्ति का चित्र हमारी बुद्धि में रहता है कि ये व्यक्ति कैसा है, और वो जो हमारा जो चित्र होना चाहिए वो फरिश्ते रूप का या लाइट आने का, जो हम सारे संसार को रेडिएट कर रहे हैं, या वो आर्ब ऑफ लाइट का, वो चित्र हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका आइडिया चेंज होगा तो एक चित्र हट जाएगा, उसकी बजाय वो चित्र भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर दोनों में से किसी तरीके का हम पुरुषार्थ करें, तो आप चाहे चित्र को कायम रखें, चाहे अपने उस वैल्यूज को कायम रखें, तो वो जो स्थिति बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं समझता हूं निश्चित रूप से बनी रहेगी। और तीसरी एक बात यह है कि जो हम में कोई कमजोरी खराबी आ जाती है, जिसको हमारे बड़े पॉइंट आउट करते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हम उसको ठीक समझ रहे हैं, लेकिन हमको वो रुकावट पड़ रही है, जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वैसी है नहीं, तो उसमें अगर हमें कोई समझाता है या गाइडलाइंस देता है, राइट बात सुझाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कई दफा कि रिजिस्ट करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई जिसको बहने कहते हैं कि सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम ठीक है, तो वो जो रिजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश हम करते हैं, उससे भी जो हमारी स्थिति बननी चाहिए वो स्थिति हमारी बन नहीं पाती। अगर हम मान जाएंगे कि हाँ ये खराबी हम में है, तो शायद दूसरा समझेगा कि देखो इसने माना है, कबूल किया अपनी गलती को, और उससे शायद हमारा आगे के लिए जो इम्प्रेशन है वो खराब हो जाएगा। ये हम नहीं देखते कि हमारा नुकसान वैसे कितना हो रहा है। तो कई दफा हमने देखा है कि हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है अगर हम ये सोचकर चलते हैं कई लोग कि अरे तुम्हें मालूम नहीं, ऐसे ही टैक्स से चला जाता है, इस तरह से ही काम होता है, इसके बिना होता नहीं, ये तरीका अख्तियार किया जाता है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, ये संसार ऐसे ही चलता है, आप तो बिल्कुल एक ऐसी बात करते हो जो असंभव जैसी है, दुनिया में रहना है हमने तो इस तरह से रहा जाता है। तो इस तरह से जस्टिफाई करके, जैसे संसार के लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं, मेडिटेशन तो अच्छा है करना, हम भी चाहते हैं, टाइम नहीं, जस्टिफाई करते हैं अपनी एब्सेंस को, ऐसे ही हम भी जो कोई ना कोई कारण निकाल के जस्टिफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, उसका कोई सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं, उससे जो हमारी वो प्रगति होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। क्योंकि अभी समय भी हुआ है तो इतने तक समाप्त करूंगा कि ये अगर बातें हम ध्यान में रखें और फिर कोशिश करें कि हमारा पुरुषार्थ जो बाबा ने कहा हुआ है, हमें लक्ष्य क्लियर दिया हुआ है, वो चित्र अगर हम सामने रखें कि मैं वो लाइट स्वरूप हूं, मैं वो फरिश्ता रूप हूं, मैं आर्ब ऑफ लाइट में हूं, मैं वो बिंदु रूप हूं जिसके आसपास वो लाइट का आ रहा है, चलते फिरते वो ध्यान हमारा रहे, तो फिर जल्दी हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें। ओम शांति। थैंक यू।